दिन भर 30 जुलाई दिन रविवार, स्वीकार करें संदीप सोनी का नमस्कार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा, जीएसटी का फायदा नजर आने लगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है?
पूरे पूरे अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि देश भर में क्या हुआ है। हो सकता है कि बिहार की स्थिति कुछ और हो और मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ और हो।
श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन का भारी निवेश, भारत के लिए कितनी चिंता की बात है?
जो प्रेसिडेंट राजपक्षे हैं, जब थे वो प्रेसिडेंट, वो अक्सर ये कहा करते थे कि मैंने तो पहले इंडिया को ही कहा था कि वो आके इसको डेवलप करें, उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैं चाइना के पास गया।
और संग संग गुनगुनाओगे में आज बात संगीतकार रवि की। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 34वें मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी महज एक कर सुधार नहीं है, बल्कि एक नई संस्कृति है। भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात के समुद्र तट के पास से 1500 किलो नशीला पदार्थ बरामद करने का दावा किया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता डीके शर्मा ने बताया कि इसकी कीमत 3500 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। उन्होंने बताया कि ये अब तक की पकड़ी गई नशीले पदार्थ की सबसे बड़ी खेप है। आज इस खेप को पोरबंदर लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की आतंकरोधी पुलिस ने एयरक्राफ्ट पर हमले की एक साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। पुलिस का मानना है कि इसके पीछे इस्लामिक कट्टरपंथियों का हाथ था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मलकम टर्नबुल ने कहा कि सिडनी और आसपास के इलाकों में छापे मारने के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांचकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि अत्याधुनिक डिवाइस की मदद से एक एयरक्राफ्ट में धमाका करने की योजना बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के कमिश्नर एंड्रयू कॉल्विन ने कहा कि इन छापों के दौरान पुलिस ने ऐसी सामग्री बरामद की है जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है।
Well, early days in investigation, as I said before, we do believe it is Islamic-inspired terrorism.
अभी जांच शुरुआती दौर में है और हम मानते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित कार्रवाई थी, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी पूरी जांच अभी करना बाकी है। ये थे एंड्रयू कॉल्विन के शब्द। और इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया। सैनिक पोशाक में इस परेड में पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12,000 सैनिकों के दल का निरीक्षण किया। चीन के उत्तरी प्रांत इनर मंगोलिया में आयोजित परेड में कई अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। यहां पर अपने संबोधन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, शांति चीन के लोगों के लिए वरदान है, लेकिन इस शांति की रक्षा करना सेना की जिम्मेदारी है। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है और शांति की रक्षा जरूरी हो चुकी है। आज हम चीन के कायाकल्प के उतने नजदीक पहुंच चुके हैं जितने पहले कभी नहीं थे। इतिहास में शायद ये वो मौका है जब चीन को सबसे ज्यादा मजबूत सेना की जरूरत है। हमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विचारों पर चलकर एक मजबूत सेना बनानी होगी। ये थे शी जिनपिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कतर से संबंध खत्म करने वाले चार खाड़ी देशों ने कहा है कि कतर को चरमपंथ से लड़ाई की 4 शर्तों के अलावा खाड़ी देशों के संकट को खत्म करने के लिए रखी गई 13 मांगों को भी मानना होगा। एक प्रेस वार्ता में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने कहा कि ये सभी देश कतर के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी मांगों में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। करीब 10 दिन पहले इन देशों ने कतर को सौंपी गई 13 मांगों को छोड़कर सिर्फ 6 शर्तें रखी थीं। वेनेजुएला में संविधान को दोबारा लिखने के लिए नई असेंबली के गठन के लिए आज मतदान हो रहा है। विपक्ष ने इस वोटिंग का बहिष्कार किया है। विपक्ष का आरोप है कि नई असेंबली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की शक्तियों को बढ़ाने का एक हथकंडा है। इस दौरान और इस असेंबली के विरोध में कई महीनों से वेनेजुएला में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक पर भी सुन रहे हैं दिन भर का सीधा प्रसारण। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी रेडियो पर अपने कार्यक्रम मन की बात में आज दावा किया कि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू होने के एक महीने बाद इसका असर नजर आने लगा है। जरूरी चीजों के दाम कम हुए हैं और गरीबों को इसका फायदा मिलने लगा है।
GST के लागू हुए करीब एक महीना हुआ है और उसके फायदे दिखने लगे हैं और मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि GST के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़े नहीं दिए हैं, तो क्या एक महीने में GST के कारण दाम वाकई कम हुए हैं, क्या गरीबों को इसका लाभ मिलने लगा है, या ये तस्वीर जैसी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, अभी अधूरी है। मैंने यही सवाल आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार के सामने रखे।
सरकार ने खुद एक लिस्ट जारी की थी जिसे बताया था कि किन किन चीजों पर टैक्स रेट कम हो जाएगा और वहां पे दाम कम हो जाएंगे, लेकिन उसी प्रकार कुछ चीजें हैं जिनके दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां पे जो टैक्स रेट है वो बढ़ गया है। अब खासकर जैसे सर्विसेज हैं तो सर्विसेज पे टैक्स रेट ज्यादातर बढ़ गया है और सर्विसेज आज हमारी अर्थव्यवस्था का करीब 55% है उत्पादन का, तो अगर 55% चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उनका असर बाकी चीजों पे भी पड़ता है। तो होता यह है कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते कहीं और असर कहीं और होता है। अगर डीजल का दाम बढ़ गया, अगर ट्रक का दाम बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ गया तो जो मतलब ट्रेडर है उसका कॉस्ट बढ़ गया तो वो दाम बढ़ा देगा, जो आम मिडिल क्लास का व्यक्ति है जो छोटी कार खरीदेगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। हमारा जो टैक्स रेट जो फिक्स किया गया है ये GST में, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहा जाता है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मतलब कि जितना पहले टैक्स कलेक्ट होता था उतना ही टैक्स अब कलेक्ट होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसका फिटमेंट जो है वो फिटमेंट का मतलब है कि जो पहले टैक्स जिस चीज पे जहां कहीं लग रहा था उसके आसपास का टैक्स रेट ही लगाया जाए। तो इसीलिए जो बहुत सारी टॉयलेटरीज की चीजें मानी गई जैसे टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, इन सब चीजों पे कहा जा रहा है कि 12% पे टैक्स रेट आ गया है तो वो चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन सारी की सारी सर्विसेज जैसे हैं, बैंकिंग की है, बाकी हैं, इन पे जो टैक्स रेट जो बढ़ के 18% होगा तो यहाँ पे अब ज्यादा हो जाएगा। होता क्या है कि हमारी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जब वो डिटेल में निकल के आएगा तो पता लगेगा किन किन वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं और किन किन वस्तुओं के दाम घट गए हैं। तो अभी जो GST आने के बाद अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी पूरे अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि देश भर में क्या हुआ है। हो सकता है कि बिहार की स्थिति कुछ और हो और मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ और हो, पर ऑल इंडिया लेवल पे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आएगा तो हमें ज्यादा पता लगेगा कि असली में हुआ क्या।
प्रोफेसर साहब, भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करता है, रोज कमाता है, हर दिन कुआं खोद के पानी पीने वाली बात है। जिस गरीब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर रहे थे, क्या वाकई उस गरीब तक इसका कोई लाभ पहुंचेगा भी?
ऐसा है कि जो सरकार का कहना है कि हमने 50% जो गुड्स हैं जो आम आदमी के कंजम्पशन की हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो गेहूं और चावल वगैरह हो, जो नॉन पैकेज प्रोडक्ट हैं, उस पर हमने टैक्स लगाए नहीं है। तो सरकार का कहना है कि ये जो चीजें हैं इस पे क्योंकि टैक्स हमने लगाया नहीं तो इस पे GST का कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि जहां पे टैक्स लगता है और जहां पे उसका असर पड़ता है ये दो अलग होते हैं। तो अगर जैसे कि इन वस्तुओं पे अगर टैक्स नहीं भी लगाया है पर बाकी और चीजों पे जैसे सर्विसेज हैं, जैसे बाकी और है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, इस पे अगर टैक्स बढ़ गया तो जो आपने जब ढुलाई की इन सब चीजों की तो इनके भी दाम बढ़ जाते हैं, तो इसका असर हमारे गरीब लोगों पे भी असर पड़ता है। तो अगर GST से टैक्स ज्यादा इकट्ठा करना हुआ, जैसे सरकार का कहना है कि हम ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, तो उसका असर ये होगा कि दाम जो बढ़ेंगे तो गरीब आदमी पे भी उसका असर पड़ेगा, और क्योंकि रिग्रेसिव होता है तो रिग्रेसिव होने की वजह से उस पर ज्यादा असर पड़ेगा गरीब आदमी के ऊपर उसका।
क्या संक्षेप में ये कह सकते हैं कि GST का नफा नुकसान बड़ी तस्वीर पता चलने में अभी और वक्त लगेगा, एक महीने में कुछ कहना जल्दबाजी होगी?
जी हाँ, अभी एक महीने में कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी तो देखिए जो ट्रेड है हमारा वो अभी एडजस्ट कर रहा है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है कि उसको कैसे डील करे और कहाँ पे उसको मतलब जो उसका जो वो लगेगा और कहाँ पे उसका असर नहीं पड़ेगा। और हमारे ट्रेडर्स भी इसीलिए काफी परेशान हैं और जो छोटे उद्योग हैं और जो कुटीर उद्योग हैं वो भी परेशान हैं। और वहां पे अगर परेशानी है तो उससे रोजगार पे असर पड़ेगा, रोजगार का असर जो गरीबी पे पड़ेगा। तो कुल मिला के इसका पूरा असर क्या है वो तो 2-3-4 महीने बाद ही पता लगेगा, और जो इसका लॉन्ग टर्म असर है वो 1-2 साल में पता लगेगा।
ये थे आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
श्रीलंका ने अपने दक्षिणी बंदरगाह हम्बनटोटा के विकास के लिए चीन के साथ $1 अरब का समझौता किया है। ये बंदरगाह एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मुख्य समुद्री मार्ग के रास्ते में है। श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा ने इस समझौते को श्रीलंका के लिए ऐतिहासिक बताया है।
This is a historic day for Sri Lanka because we just signed a concession agreement between the Sri Lanka.
श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा कह रहे थे, चीन के साथ समझौते का दिन ऐतिहासिक दिन है, इससे श्रीलंका के विकास का एक नया युग आरंभ होगा। 1980 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब श्रीलंका में किसी एक प्रोजेक्ट में इतने बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश किया गया है। हालांकि श्रीलंका में इसके विरोध में काफी प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन अब हालात बदलने की बात कही जा रही है। बहरहाल यहां एक सवाल ये भी उठता है कि श्रीलंका में चीन का इतने बड़े पैमाने पर निवेश क्या भारत के लिए चिंता की बात है, हो सकती है? श्रीलंका में चीन की इस मौजूदगी को भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखा समझा जाए, यही जानने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम से बात की।
देखिए, कंसर्न तो था, ये पहले से ही था जब से शुरू हुआ है 2008-09 में, तब से इंडिया कंसर्न ही रहा है इसके बारे में कि ये चाइना कुछ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकती है, और इन्होंने कन्वे भी किया इन कंसर्न्स को। पर ये भी सच है इसमें कि जो प्रेसिडेंट राजपक्षे हैं, जब थे वो प्रेसिडेंट, वो अक्सर ये कहा करते थे कि मैंने तो पहले इंडिया को ही कहा था कि वो आके इसको डेवलप करें, उन्होंने नहीं किया इसलिए मैं चाइना के पास गया। अब चाइना ने कर दिया है इसको डेवलप, एक फेज कंप्लीट हुआ है और 2 फेज अभी और बाकी हैं इसमें करने हैं। और जो फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है वो चाइना एक्सिम बैंक ने ही इसको फंड किया 85%। अब जो इसका एनुअल रिपेमेंट आ रहा है वो श्रीलंका ने अपने हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा कि ये हमारे से नहीं दिया जाएगा वापस। तो इन्होंने सोचा कि इसके बजाय हम कोशिश करें इसको रीपे करने की, हम इसको बेच देते हैं, चाइना के हाथ ही बेच देते हैं, क्योंकि ये जो ये पोर्ट था ये लॉस मेकिंग पोर्ट था, मतलब इससे कोई बिजनेस नहीं आ रहा था, इससे सिर्फ लॉसेस आ रहे थे। इन्होंने ये उपाय का बनाया कि हम चाइना को ही बेच डालते हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने प्लान बनाया था और लास्ट ईयर अप्रैल से ये बात प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे कहते आ रहे हैं कि इसको बेचे बिना हमारा कोई चारा नहीं है। और उसके साथ एक सेपरेटली एक और इनका एक स्कीम था कि पोर्ट के आसपास एक SEZ लगा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो लगभग 13,000 या 15,000 acres बनता है। उस लैंड को चाइनीज को देंगे, उनकी कंपनीज आएंगी वहां पे और वो फैक्ट्री सेटअप करेंगी, और ये जो पोर्ट है ये चाइना ही चलाएगा। पर इससे बहुत ज्यादा बैकलैश हो गया श्रीलंका में कि ये कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं यूज होगा। तो फिर सब देखते हुए December 16 को उन्होंने लास्ट ईयर एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बनाया था, तो फिर इन्होंने ये किया कि इसको रिवर्स किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ये पूरा डील इन्होंने बनाया है। इसमें इंडिया के लिए ये खास बात है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये है कि ये कोई भी मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं यूज होगा, कोई सबमरीन या कोई मिलिट्री शिप या कोई और मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ पे विदाउट परमिशन ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट ये नहीं हो सकता।
अभी आपने जिक्र किया था कि भारत को ये ऑफर था कि वो हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करे श्रीलंका की ओर से, जिसे भारत ने मना कर दिया। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और स्ट्रेटजी के हिसाब से भारत की तरफ से ये कदम कुछ गलत उठ गया है या?
देखिए, ये दोनों तरफ जा सकता था। ये 2008-09 में ऑफर किया, उस टाइम UPA थी, UPA फर्स्ट टर्म का एंड था उनका, और $1.5 बिलियन लगाना इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना दूर सोचते भी नहीं है। देखो अब ट्रिंकोमली भी एक अग्रीमेंट हमने साइन किया है श्रीलंका के साथ, और ये श्रीलंका ने हमें ऑफर ही इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा वो बैलेंस भी कर रहे हैं बिटवीन चाइना एंड इंडिया, पर इसको पूरा डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। हमने इसलिए उसमें जापान को भी इन्वॉल्व किया है।
आपको लगता है क्या ये श्रीलंका और चीन के बीच जो डील हुई है सील, इसकी वजह से भारत को फ्यूचर में रिग्रेट हो सकता है किसी तरह का?
इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया, पर इंडिया इसे रोक नहीं सकती। कोशिश किया इन्होंने पर इंडिया से रोक नहीं पाई। आप पैसे दे सकते हो दो, नहीं तो हम चाइना के पास जाएंगे।
श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन का भारी निवेश भारत के लिए कितनी चिंता की बात बता रही थी वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम। और अब वक्त हो चला है उस साप्ताहिक कार्यक्रम का जिसका नाम है संग संग गुनगुनाओगे। संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ आज हम कर रहे हैं बात संगीतकार रवि की।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
रविशंकर शर्मा उर्फ रवि हिंदी फिल्म संगीत के ऐसे परिश्रमी संगीतकार के रूप में याद किए जाते हैं जिनकी सहज धुनों ने सफलता के बड़े कीर्तिमान स्थापित किए।
इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे।
रवि अपने शुरुआती दौर में हेमंत कुमार जैसे दिग्गज संगीतकार के सहायक के रूप में फिल्म संगीत की दुनिया से जुड़े और उन्होंने उनके साथ शर्त, नागिन, दुर्गेश नंदिनी और एक ही रास्ता जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में सहायक संगीत निर्देशक की तरह काम किया। अपने गुरु हेमंत कुमार को इज्जत देने के लिए उन्होंने एक बेहद सुंदर भजन गवाया जब वे स्वतंत्र संगीतकार हुए।
दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे,
दर्शन दो घन श्याम। रवि के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें उन्हें एक सफल संगीतकार बनाती हैं, उनमें एक ऐसी चीज भी शामिल रही जो उस दौर के अन्य बड़े संगीतकारों के यहाँ मुश्किल से मिलती थी। मसलन वे एक ऐसे अजात शत्रु संगीतकार रहे जिनकी मित्रताएं सभी खेमे के लोगों के साथ थी और सभी तरह के पार्श्व गायक गायिकाओं से उनकी दोस्ती थी। वे कमर्शियल सेटअप में बहुत सहजता से घुल मिल जाते थे और सारे संगीतकारों के साथ अपने आत्मीय रिश्ते के चलते एक नएपन का माहौल सृजित करते थे जो उनकी धुनों की सकारात्मकता से भी देखी जा सकती है। ऐसी सहजता को जिन धुनों में पकड़ा जा सकता है उसके एक दो उदाहरण आप सुन सकते हैं।
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे।
रवि के संगीतकार को खिलकर एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने में जिस बैनर का हाथ रहा उसमें बी आर चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने बी आर चोपड़ा के लिए वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, निकाह, आज की आवाज, तवायफ, दहलीज और अवाम जैसी फिल्मों का संगीत दिया। और इस लंबी फहरिस्त में ये देखा जा सकता है कि लगभग सारी फिल्मों का संगीत मशहूर हुआ और लोकप्रियता की सारी हदें तोड़ गया।
हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए,
चलो
फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
रवि के खाते में लता मंगेशकर के लिए जो धुनें दर्ज हैं, वो बिल्कुल अलग ही धरातल पर खड़ी नजर आती हैं। जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि रवि ने बीआर चोपड़ा कैंप के लिए जब संगीत रचा तो उसमें अधिकांश गाने आशा जी के खाते में गए, लेकिन जब हम लता मंगेशकर के लिए रवि का काम देखते हैं तो एक अलग किस्म की हरारत, मुलायमियत या एक रेशमी एहसास झलकता हुआ दिखाई पड़ता है जो कम धुनों में हम अलग से पा सकते हैं। एक दो उदाहरणों से ये बात देखी जा सकती है। जब लता मंगेशकर की चर्चा करेंगे तो हमें आशा जी की बात भी करनी पड़ेगी, और खासकर तब जब वो रवि के संगीत निर्देशन में काम की बात हो। आशा जी के लिए सैकड़ों गीत रचते हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण धुनों को जो उन्होंने अपने संगीत से सवारा है, उनकी वानगी भी यहाँ देखी जा सकती है।
जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा, तुम याद आए। ओ सैया ले गई जिया, तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है।
बाद के दौर में रवि ने निकाह में सलमा आगा से गीत गवाए, और ये फिल्म भी रवि के लिए वैसी ही पहचान बना गई जिस तरह से खयाम के लिए उमराव जान। निकाह का संगीत अविस्मरणीय संगीत था, और एक बिल्कुल नई गायिका को स्थापित करते हुए वे शास्त्रीयता और लोकप्रियता के बीच ऐसी साध, ऐसी सुंदर संतुलन की बात करते हैं जो देखने ही बनती है। ये गीत उस बात की सबसे सुंदर नुमाइंदगी है। रवि हर तरह के गाने बनाने में सिद्धहस्त थे, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो लव डुएट, चाहे वो लोरी का मामला हो या भजन कीर्तन। प्रेम गीतों में भी उनकी उदारता या एक बिल्कुल हरफन मौला स्थिति को देखा जा सकता है कि कैसे वो सौंदर्य और रोमान को एक साथ मिलाते हैं।
तेरा साथ न छोड़ू कहाँ जाएगी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
रवि के लिए ये कहा जा सकता है कि हर एक पार्श्व गायक गायिका के लिए उनके पास एक सबसे मकबूल धुन मौजूद थी, फिर वो बात मुकेश की हो, मोहम्मद रफ़ी की, या आशा जी या लता मंगेशकर, हर जगह एक ऐसा गीत उनके पास है जो उन सारे कलाकारों की अपनी बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल किए जाने योग्य है। ऐसे गीतों में मोहम्मद रफ़ी के इस गीत से ये बात समझी जा सकती है। एक सार्थक संगीतकार के रूप में उनका संगीत उस हद तक ही आधुनिक होने की मांग करता है जिसमें उनकी पूर्ववर्ती परंपरा की अनुगूंजे भी शामिल हों। वे ऐसी स्वच्छंदता के पैरोकार रहे जहां पूर्वज का अनुसरण और समकालीन प्रेरणा भी महत्व रखती है। शायद इसीलिए उनकी फिल्मों के ज्यादातर गीत अपने दौर की नुमाइंदगी में ताजगी भरे एहसास के साथ अपनी सरलता और परंपरा की छाया को भी प्रभावी रूप से व्यक्त करते हैं। रवि की इस लिहाज से एक बड़ी उपस्थिति हेमंत कुमार, मदन मोहन, चित्रगुप्त, एन दत्ता, जमाल सेन, हंसराज बहल और जीएस कोहली जैसे परंपरागत ढंग के नवाचारी लोगों की पंक्ति में होती है। चलते चलते हम उनका ये गीत सुनते हैं जो रवि के एक बड़े सांगीतिक कायनात को दर्शाती है और हमें एक बड़ा संगीतकार मुहैया कराती है।
संग संग गुनगुनाओगे, आज हम बात कर रहे थे संगीतकार रवि की। और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आज तो बॉक्सिंग की दुनिया में कुछ हलचल ज्यादा है।
जी संदीप जी, भारतीय मुक्केबाजों ने चेक गणराज्य में समाप्त हुए 48वें ग्रां प्री उस्तिनाद लाबेम टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया।
जमकर मुक्के बरसाए हैं
और पदक भी जीते। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शिव थापा ने 61, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे मनोज कुमार ने 69, अमित फांगल ने 52, गौरव विधूड़ी ने 56 और सतीश कुमार ने 91 किलो से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। कविंदर बिस्ट और मनीष पवार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस चैंपियनशिप में मिली कामयाबी से भारतीय मुक्केबाजों के हौसले बढ़ेंगे जो इसी महीने 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। विश्व चैंपियनशिप में भारत के अमित, कविंदर, गौरव, शिव थापा, मनोज, सुमित और सतीश के अलावा विकास कृष्ण अपने मुक्कों का दम दिखाएंगे। उधर मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच केनिंगटन ओवल में 3रा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज मैच के 4थे दिन थोड़ी देर पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 256 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की बढ़त भी हासिल हुई थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड के कीटन जेनिक्स ने 48, टॉम वेस्ले ने 59 और कप्तान जो रूट ने 50 रन बनाए थे। फिलहाल इंग्लैंड के पास 434 रनों की मजबूत बढ़त हासिल है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। उधर कल भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को खेल के 4थे ही दिन 304 रन से हराकर पहला टेस्ट मैच अपने नाम किया, कई रिकॉर्ड भी बने और इसी के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल की। इस टेस्ट मैच में पहली पारी में शिखर धवन ने 190 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी का जश्न मनाया। दरअसल उनकी बड़ी पारी ने ही इस मैच में बड़ा अंतर पैदा किया, तो चेतेश्वर पुजारा ने भी पहली पारी में शतक बनाकर दिखाया कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। दूसरी तरफ कप्तान कोहली ने भी कप्तान के तौर पर परिपक्व निर्णय लिए। वो चाहते तो श्रीलंका को फॉलो ऑन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना बेहतर समझा और शानदार नाबाद शतक जमाकर अपना खोया आत्मविश्वास भी हासिल किया। तो श्रीलंका के सामने जो दूसरा टेस्ट मैच 3 तारीख से कोलंबो में शुरू होगा, मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
खेल समाचार सुने आपने आदेश कुमार गुप्त से। और इसी के साथ भारत में बजने वाले हैं रात के 8 कार्यक्रम के समापन से पहले सुनेंगे मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में नए संविधान को दोबारा लिखने के लिए नई असेंबली के लिए मतदान से पहले हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में असेंबली के उम्मीदवार और विपक्षी नेता भी शामिल हैं। अलास्का में अमरीकी थाट सिस्टम के परीक्षण में एक मीडियम रेंज मिसाइल गिरा गया है। भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात के समुद्र तट के पास 1500 किलो नशीला पदार्थ बरामद करने का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया की आतंक विरोधी पुलिस ने एयरक्राफ्ट पर हमले की एक साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 34वें मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुने आपने हरिता कांडपाल से और इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत, भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, सुबह 6:30 बजे। तब तक समस्त सहयोगियों के साथ संदीप सोनी को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।